اب اس کے بعد اگلی صورت اس سے بھی خوبصورت ہے اور وہ ہے النساء، عورتوں سے متعلق صورت، یتیموں اور بیواؤں کے حقوق کی بات اور اطیع اللہ اور اطیع الرسول سے بھری ہوئی صورت۔ اگر ایک گو میں اس صورت کو دیکھ لیجئے تو پہلی صورت یعنی جیسے ایک بڑی کمپوزیشن ہے نا، ابھی ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، پھر اگلے پارے کے شروع میں ہم کچھ اور چیزیں بھی دیکھیں گے۔ تو اگر اوور آل ایک نٹ شیل میں آپ صورت کو جمع کریں تو آیت 1 سے 43 میں اسلام کی معاشرتی ہدایات ہیں جن کا ہدف یا گول ہے معاشرے کے ہر فرد کے مال، جان اور آبرو کا احترام ہو اور تحفظ ہو۔ کیا خوبصورت دین ہے، پسے سے پسے طبقے کی بھی سنوائی ہے اس دین میں۔ پھر دوسری ترکیب یا دوسرا پیکیج اس صورت میں کیا ہے، 44 سے 57، یہود کے جرائم کا بیان، کیوں ان سے کام واپس لیا، منصب سے ان کو ہٹا کر کسی اور کو کیوں ڈال دیا۔ پھر 58 سے 149، اہل ایمان سے خطاب، منافقین کی 3 کمزوریوں کی مذمت، اور وہ کمزوریاں کیا تھیں، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز یعنی بھاگنا، مراد یہ کہ اطاعت نہ کرنا، ہجرت سے پہلو تہی یعنی اوائڈ کرنا، مائگریٹ کرنے کو، اور اللہ کی راہ میں جنگ سے فرار۔ 150 سے 176، جو تیسرا بڑا حصہ ہے بلکہ چوتھا بڑا حصہ اس صورت کا، اہل کتاب کے جرائم اور اہل ایمان کے لیے ہدایات۔ تو یہ تو تھی ایک بڑی ترتیب، اب چلیے ذرا آیت بائے آیت سورت نساء کا جائزہ۔ پہلی آیت، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہاں تھی، سورت بقرہ میں۔ یہاں دیکھیے بالکل وہی انداز اختیار کر کے اللہ تعالیٰ انسانیت کو پکارتے ہیں، اور یہ وہ آیت ہے جس کو ہم خطبہ نکاح میں بھی پڑھتے اور سنتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس وقت جن کا نکاح ہو رہا ہے وہ بھی سن رہے ہوں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ تو آیت نمبر ایک کیا ہے، مساوات انسانی کی بنیادیں، یعنی پہلی ہی آیت نے ذات پات اور کاسٹ سسٹم کو ختم کر دیا۔ پھر آیت 2 سے لے کے 10 تک خواتین اور یتیموں کے حقوق کی بات ہے، 11 to 12 وراثت کے احکامات، علم الفرائض، 13 to 14 حدود اللہ کی اہمیت، یعنی اللہ کی حدوں میں رہنا ہے اور ان کو قائم بھی رکھنا ہے، 15 to 16 بدکاری کی سزا جو موجودہ سزا سے پہلے تھی، 17 to 18 بہترین حصہ ہے کن کی توبہ قبول ہوتی ہے اور کن کی نہیں، 19 سے 21 خواتین کے حقوق، اور 22 سے 25 کن خواتین سے نکاح حرام ہے یعنی محرمات ابدیہ، کوئی نصب سے تو کوئی ساحر سے تو کوئی رضات سے۔ تو یہ تو تھے ٹاپک، آئیے ذرا اپنے لیے چند آیتوں سے گائیڈ لائن لیتے ہیں، اہم ہدایات سورت نساء کی روشنی میں۔ جس نے عمل کرنا ہے اس کے لیے تو یہ بڑی اہم ہے، اور جس نے عمل نہیں کرنا وہ کہے گا اٹس اوکے، پچھلی بھی زندگی گزر گئی، اگلی بھی گزر جائے گی، اور بہت سارے لوگ دنیا میں سے ایسے ہی کچھ کیے بغیر جاتے ہیں۔ تو پہلی بات آیت نمبر ایک میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، مراد آدم علیہ السلام، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، جس کے نام کو تم اپنی حاجتیں پوری کرنے کا ذریعہ بناتے ہو، ڈرو اور رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وحدت اب اور وحدت رب، دو لفظ لکھ لیجیے، اسے ایک آیت میں دونوں ہیں، رب بھی ایک ہے اور اب یعنی باپ بھی ایک ہے۔ کائنات کا کتنا پیارا نظام اس نے پھیلا دیا، اس پہ غور و فکر کرتے جائیے۔ دو طرح کے تقووں کی بات ہے اس آیت میں، اتقوا ربکم اور واتقوا اللہ، پہلے رب کا لفظ ہے پھر اللہ کا لفظ ہے، کیونکہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے دو طرح کے تقوے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک وہ تقوی جو حقوق اللہ میں مددگار ہو اور دوسرا جو حقوق العباد میں ہو۔ اگر نکاح ہوتے وقت لڑکا لڑکی، لڑکی کی ماں، لڑکے کا باپ اور پھر دیگر خویش و اقارب اگر اس کا ترجمہ سن رہے اور سمجھ رہے ہوں تو اللہ ہی گھر نہ ٹوٹیں، کیونکہ تقوی ہی وہ فورس ہے جو آپ کے میرے گھروں کو بچائے گا اور ہمارے رب سے تعلق کو بچائے گا۔ تو کیا سیکھا، سب کا خالق ایک اللہ، سب کے والدین آدم اور حوا، سیم فیملی ہم، اور رحمی رشتوں کی اہمیت یعنی خون کے رشتے نہیں کاٹنے۔ پھر اگلی ہدایت دیکھیے گا، مال یتیم کھانے والے، آیت نمبر 10، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں और दोजख में डाले जाएंगे। अल्लाह अकबर, क्या वो पेट होंगे और क्या उसमें आग लगेगी जहां आग लगी हो। तो कभी ऐसे मिसकीनों का हक ना खाइए जिनका बाप नहीं रहा। चचा भी सुन लें भतीजों की जायदादों के लिए, और इसी तरह भाई भी सुन लें बहनों के लिए। ऐसे बच्चे का हक खाना या ऐसे बड़े का भी हक खाना कि जिसके पीछे कोई पूछने वाला ना हो, तो ये असल में अल्लाह को बुलाना है। अल्लाह ना करे कि आप किसी का खाएं और अल्लाह आपसे निकलवा ले। फिर आयत 14, माले वरासत हड़प करने वाले। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दहुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुम मुहीन। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और इसकी हदों से निकल जाएगा, इसको अल्लाह दोजख में डालेगा जहां वो हमेशा रहेगा और इसको जिल्लत का अजाब होगा। क्या पता चला कि वरासत का माल मत खाओ। किसी का माल और वो भी वरासत का खा जाना, मौत नहीं याद आती। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जिसने एक बार किसी प्यारे से वरासत पा ली, यानी बाप चला गया तो बेटे बेटियों को इससे मिल गए, और इसी तरह करीब के रिश्तों में शौहर और बीवी, क्या उसके दिल में माल की जरा सी भी कदर होगी? नहीं होगी। वो तो ले रहा है और उसको ये नहीं पता कि मेरी किसने लेनी। उसको तो आज मिल गई, पता नहीं अब आगे से मुझसे कब ले जाएंगे। तो याद रखिए, माल की मोहब्बत में जीने वालों के लिए ये पैगाम है इस सूरत का कि कम से कम विरासत के माल की बांट तो सही किया करो। बाकी तो तुम जो करते हो वो तो करते ही हो, और जितना ज्यादा इस पे इंसान गौर करे उतना दिल से माल की मोहब्बत निकल जाती है। तो अहकाम मीरास को अल्लाह की हुदूद कहा गया। इधर सारी जिंदगी की नेकियां बाज दफा गलत वसीयत पे खत्म हो जाती हैं, और इसका उलट भी होता है। फिर इसी तरह कबूलियत तौबा, आयत नंबर 17 है। इन्नमा तौबतुल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना सुअ बिजहाला। अल्लाह इन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठे हैं, फिर जल्द तौबा कबूल कर लेते हैं। बस ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला मेहरबानी करता है और वो सब कुछ जानता और हिकमत वाला है। कहते हैं ना, इफ गाइडेंस डिलेड, गाइडेंस डिनाइड। आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक पॉपअप आता है, थोड़ी देर आप ना रिस्पॉन्स करें तो चला जाता है ना। इसी तरह तौबा का एक वक्त होता है, और सच्ची तौबा दरअसल फौरी तौबा का ही नाम है। ये नहीं कि खूब इंजॉय करके लोगों में अपनी तस्वीरें डाल डूल के बाद में कि ओहो ये तो गलत हुआ, वो भी हो जाए तो बड़ी बात है, मौत के फरिश्ते के आने से पहले हो जाए तो बड़ी बात है। लेकिन इन आयतों में हम समझते हैं कि मौत तक, मरने तक, गरगरे तक भी गुनाह पे पड़े रहना उसकी तौबा कबूल नहीं। तो अल्लाह ताला हमें सुम्मा यतूबून मिन करीब की तौफीक दे। आप चाहें तो इस आयत का नंबर नोट कर लें, इसकी डिटेल तफसीर सुन लीजिए, बहुत बेहतरीन आयत है। और ख़ास तौर पर आयत ब आयत में इसको हमने काफ़ी डिटेल से देखा, और तौबा के असल मानी पलटने यानी गुनाहों को छोड़ने के हैं। और फिर आयत नंबर 19, बीवियों से हुस्न सलूक का की हिदायत है। वा शुरू हन्ना बिल मारूफ फ़ैन करिख तुमू हन्ना फसान तक रहू शयम वल्लाफी खैरन कसीरा। और इन औरतों के साथ अच्छी तरह रहो सहो, अगर वो तुमको नापसंद हों तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो, और अल्लाह इसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। सोचने की बात है। तो बीवियों के मामले में शोहरों को संजीदा होना चाहिए, हुस्न सलूक कीजिए, खामियों की बजाय खूबियों पर तवज्जो रखिए। इसमें एक असूल भी बड़ा प्यारा है, आसान तक रहु शयन वजल्लाफी खैरन कसीरा। तो एक दूसरे की बुराइयां चुनने की बजाय खूबियां ढूंढिए, और तुम्हें बुरा लगे लेकिन अल्लाह उसमें खैर दे। बीवी अच्छी नहीं लगी, बच्चे अच्छे लगने लग जाएं। और इसी तरह तुम्हें अगर अपने मामले में कोई चीज़ अच्छी लगती है तो बीवियों के बारे में भी सोच लो। तो ये थी चंद आयात। अब चलते हैं आखिर में वो डूस जो सूरत निसा के इस हिस्से में आए, अवामिर। और इस नीयत के साथ बोलूंगी भी और आप भी सुनेंगे कि अमल करना है। ये सिर्फ कानों से टकराने वाली बातें नहीं है, ये डिवाइन गाइडेंस है। आसमानों से आए ये हुक्मनामे, अल्लाह हमें इसके ऊपर लब्बैक कहने वाला बनाए। पहली चीज तकवा इख्तियार करना, आयत नंबर 1। यतीमों के माल उनको लौटा देना, आयत नंबर 2। यतीम लड़कियों के बारे में अदल करना, आयत 3। औरतों के मेहर अदा करना, 4। यतीमों के मालों की हिफाजत करना, 5। यतीम का माल हद शऊर पर इसके हवाले करना, 6। विरासत के हिस्से मुकर्रर हैं, 7। गैर वारिस रिश्तेदारों को कुछ दे देना, 8। तकवा और दुरुस्त बात का अहतमाम करना, आप ढूंढेंगे इसको भी। मिरास में औलाद और वालदैन के हिस्से अदा करने हैं, 11। और ज़ौजैन के हिस्से भी देने मिरास में से, 12। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी, 13। और सच्ची और करीब की तौबा करनी, 17। बीवियों के साथ हुस्ने सलूक करना, 19। और बीवियों की खूबियों पर निगाह रखना, आयत नंबर 19। अल्लाह करे कि वो मर्द जो हर वक्त बीवियों के ऐब ही चुनते रहते हैं वो इस हुक्म पे कान धर लें। डोंट्स नवाही, यतीमों के माल खड़प नहीं करना। टू, यतीमों का माल नहीं खाना, आज 10 में भी आ गया दोबारा। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं करनी, 1-4 यानी 14। औरतों को मीरास से महरूम नहीं करना, 19। और बीवियों को दिए गए तहाइफ वापस नहीं लेना, यानी हक महर या तोहफों की सूरत में, 20। सौतेली माँ से निकाह नहीं करना, 22। फहाशी के करीब भी नहीं आना, 22। महरम औरतों से निकाह नहीं करना, 23। और दो बहनों से बयक वक्त निकाह नहीं करना, 23। अल्लाह ताला हमें इन सब पे अमल की तौफीक दे। आखिर में एक हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अथर से निकले हुए मोती, जिसने कुरान के मुताबिक बात कही इसने सच कहा, तिरमिज़ी की रिवायत है, तो इसका अपोजिट भी तो होगा ना। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें कुरान ही की बात करने की तौफीक दे। एक बुज़ुर्ग खातून एक मौके पर अब्दुल्ला बिन मुबारक को मिली थी, तकरीबन एक हफ्ते के साथ के अंदर उस औरत की ज़ुबान से कुरान के सिवा कोई बात ना निकली। जब बेटों से मिली तो उस शख्स ने कहा कि तुम्हारी माँ ने तो पूरे हफ्ते में एक लफ्ज़ कुरान के सिवा नहीं बोला। तो जवाब सुन लीजिए, और यही आपका मेरा असल काम है जो करने की ज़रूरत है। कहा, आपने एक हफ्ते की बात की, हमने पिछले 40 साल में अपनी माँ की ज़ुबान से कुरान के सिवा कोई लफ्ज़ नहीं देखा। क्या नामे अमाल होगा उस औरत का, ज़रा सोच के रश्क आता है। अल्लाह मुझे भी इसकी तौफीक दे और आपको भी। तो आज के लिए यही पारा था, लन तनालुल बिर्रा तुद्फिकू से शुरू हुआ, अपनी इसलाह की फिक्र लगाने वाला। अल्लाह ताला आपको मुझे बेहतरीन तौर पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व तूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तूब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين।